پہلا سلاطین تیرواں باب۔ اور دیکھو، خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیتل میں آیا، اور یروبام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا، اور وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا، اے مذبح، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیا پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا، وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو، مذبح پھٹ جائے گا اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیتل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ اور اس نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے دیا تھا، وہ مذبح بھی پھٹ گیا اور راکھ مذبح پر سے گر گئی۔ تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کر، تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے۔ تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی، اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا، اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو، اور میں تجھے انعام دوں گا۔ اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے، تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا، نہ پانی پینا، نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ سو وہ دوسرے راستہ سے گیا، اور جس راہ سے بیتل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا۔ اور بیتل میں ایک بڈھا نبی رہتا تھا، سو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر وہ سب کام جو اس مرد خدا نے اس روز بیتل میں کیے اسے بتائے، اور جو باتیں اس نے بادشاہ سے کہی تھیں ان کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا۔ اور ان کے باپ نے ان سے کہا وہ کس راہ سے گیا۔ اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودا سے آیا تھا کس راہ سے گیا تھا، جو یہودا سے آیا تھا کس راہ سے گیا ہے۔ سو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے لیے گدھے پر زین کس دو۔ پس انہوں نے اس کے لیے گدھے پر زین کس دیا، اور وہ اس پر سوار ہوا اور اس مرد خدا کے پیچھے چلا، اور اسے بلوت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا۔ تب اس نے اس سے کہا، کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودا سے آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب اس نے اس سے کہا، میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا۔ اس نے کہا، میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا مجھ کو یوں حکم ہوا ہے کہ تو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، और न उस रास्ता से होकर लौटना जिससे तू जाए। तब उसने उससे कहा, मैं भी तेरी तरह नबी हूं। और खुदावंत के हुक्म से एक फरिश्ता ने मुझसे ये कहा, उसे अपने साथ अपने घर में लौटाकर ले आ, ताकि वो रोटी खाए और पानी पिए। लेकिन उसने उससे झूठ कहा, सो वो उसके साथ लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और जब वो दस्तरखान पर बैठे तो खुदावंद का कलाम उस नबी पर जो उसे लौटा लाया था नाजिल हुआ, और उसने उस मर्द खुदा से जो यहूदा से आया था चिल्ला कर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने खुदावंद के कलाम से नाफरमानी की और उस हुक्म को नहीं माना जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दिया था, बल्कि तू लौट आया और तूने उसी जगह जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझे फरमाया था कि ना रोटी खाना ना पानी पीना, रोटी भी खाई और पानी भी पिया, सो तेरी लाश तेरे बाप दादा के कब्र तक नहीं पहुंचेगी। और जब वो रोटी खा चुका और पानी पी चुका तो उसने उसके लिए यानी उस नबी के लिए जिसे वो लौटा लाया था गधे पर जैन कस दिया। और जब वो रवाना हुआ तो राह में उसे एक शेर मिला जिसने उसे मार डाला, सो उसकी लाश राह में पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और शेर भी उस लाश के पास खड़ा रहा। और लोग उधर से गुजरे और देखा कि लाश राह में पड़ी है और शेर लाश के पास खड़ा है, सो उन्होंने उस शहर में जहां वो बुढ़ा नबी रहता था ये बताया। और जब उस नबी ने जो उसे राह से लौटा लाया था ये सुना तो कहा, ये वही मर्दे खुदा है जिसने खुदावंद के कलाम की नाफरमानी की, इसीलिए खुदावंद ने उसको शेर के हवाला कर दिया। और उसने खुदावंद के उस सुखन के मुताबिक जो उसने उससे कहा था उसे फाड़ा और मार डाला। फिर उसने अपने बेटों से कहा कि मेरे लिए गधे पर जैन कस दो, सो उन्होंने जैन कस दिया। तब वो गया और उसने उसकी लाश राह में पड़ी हुई और गधे और शेर को लाश के पास खड़े पाया, क्योंकि शेर ने ना लाश को खाया और ना गधे को फाड़ा था। सो उस नबी ने उस मर्दे खुदा की लाश उठाकर उसे गधे पर रखा और ले आया, और वो बुढ़ा नबी उस पर मातम करने और उसे दफन करने को अपने शहर में लाया, और उसने उसकी लाश को अपनी कब्र में रखा। और उन्होंने उस पर मातम किया और कहा, हाय मेरे भाई। और जब वो उसे दफन कर चुका तो उसने अपने बेटों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको उसी कब्र में दफन करना जिसमें ये मर्दे खुदा दफन हुआ है, मेरी हड्डियां उसकी हड्डियों के बराबर रखना, इसलिए कि वो बात जो उसने खुदावंद के हुक्म से बैतिल के मजबा के खिलाफ और उन सब ऊंचे मुकामों के घरों के खिलाफ जो सामरिया के कस्बों में हैं कही है जरूर पूरी होगी। इस माजरा के बाद भी यरुबाम अपनी बुरी राह से बाज ना आया, बल्कि उसने अवाम में से ऊंचे मकामों के काहिन ठहराए, जिस किसी ने चाहा उसे उससे मखसूस किया ताकि ऊंचे मुकामों के लिए काहिन हों। और ये फेल यरुबाम के घराने के लिए उसे काट डालने और उसे रुए जमीन पर से नेस्तो नाबूद करने के लिए गुनाह ठहरा। पहला सलातीन 13वां बाब। और देखो, खुदावंद के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बैतिल में आया और यरूबाम बखोर जलाने को मसबा के पास खड़ा था, और वो खुदावन के हुक्म से मसबा के खिलाफ चिल्लाकर कहने लगा, ऐ मसबा, ऐ मसबा, खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम योसिया पैदा होगा, सो वो ऊंचे मुकामों के काहिनों की जो तुझ पर बखोर जलाते हैं तुझ पर कुर्बानी करेगा, और वो आदमियों की हड्डियां तुझ पर जलाएंगे। और उसने उसी दिन एक निशान दिया और कहा, वो निशान जो खुदावन ने बताया है ये है कि देखो, मसबा फट जाएगा और वो राख जो उस पर है गिर जाएगी। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने उस मर्द खुदा का कलाम जो उसने बैतल में मसबा के खिलाफ चिल्लाकर कहा था सुना, तो यरबाम ने मसबा पर से अपना हाथ लंबा किया और कहा कि इसे पकड़ लो, और उसका वो हाथ जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था खुश्क हो गया, ऐसा कि वो उसे फिर अपनी तरफ खींच ना सका। और उस निशान के मुताबिक जो उस मर्द खुदा ने खुदावंद के हुक्म से दिया था, वो मसबा भी फट गया और राख मसबा पर से गिर गई। तब बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा कि अब खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा कर और मेरे लिए दुआ कर, ताकि मेरा हाथ मेरे लिए फिर बहाल हो जाए। तब उस मर्द खुदा ने खुदावंद से इल्तिजा की और बादशाह का हाथ उसके लिए बहाल हुआ, और जैसा पहले था वैसा ही हो गया। और बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा कि मेरे साथ घर चल और ताजा दम हो, और मैं तुझे इनाम दूंगा। उस मर्द खुदा ने बादशाह को जवाब दिया कि अगर तू अपना आधा घर भी मुझे दे तो भी मैं तेरे साथ नहीं जाने का, और ना मैं इस जगह रोटी खाऊं और ना पानी पीऊं, क्योंकि खुदावंद का हुक्म मुझे ताकीद के साथ ये हुआ है कि तू ना रोटी खाना ना पानी पीना ना उस राह से लौटना जिससे तू जाए। सो वो दूसरे रास्ता से गया और जिस राह से बैतल में आया था उससे ना लौटा। और बैतल में एक बुढ़ा नबी रहता था, सो उसके बेटों में से एक ने आकर वो सब काम जो उस मर्द खुदा ने उस रोज बैतल में किए उसे बताए, और जो बातें उसने बादशाह से कही थी उनको भी अपने बाप से बयान किया। और उनके बाप ने उनसे कहा, वो किस राह से गया? उसके बेटों ने देख लिया था कि वो मर्द खुदा जो यहूदा से आया था किस राह से गया था, जो यहूदा से आया था किस राह से गया है। सो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर जैन कस दो। बस उन्होंने उसके लिए गधे पर जैन कस दिया और वो उस पर सवार हुआ और उस मर्द खुदा के पीछे चला और उसे बलोत के एक दरख्त के नीचे बैठे पाया। तब उसने उससे कहा, क्या तू वही मर्द खुदा है जो यहूदा से आया था? उसने कहा, हाँ। तब उसने उससे कहा, मेरे साथ घर चल और रोटी खा। उसने कहा, मैं तेरे साथ लौट नहीं सकता और ना तेरे घर जा सकता हूं, और मैं तेरे साथ इस जगह ना रोटी खाऊं ना पानी पीऊं, क्योंकि खुदावंद का मुझको यूं हुक्म हुआ है कि तू वहां ना रोटी खाना ना पानी पीना और ना उस रास्ता से होकर लौटना जिससे तू जाए। तब उसने उससे कहा, मैं भी तेरी तरह नबी हूं और खुदावंद के हुक्म से एक फरिश्ता ने मुझसे ये कहा, उसे अपने साथ अपने घर में लौटा कर ले आ, ताकि वो रोटी खाए और पानी पिए। लेकिन उसने उससे झूठ कहा, सो वो उसके साथ लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और जब वो दस्तरखान पर बैठे तो खुदावंद का कलाम उस नबी पर जो उसे लौटा लाया था नाजिल हुआ, और उसने उस मर्द खुदा से जो यहूदा से आया था चिल्ला कर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने खुदावंद के कलाम से नाफरमानी की और उस हुक्म को नहीं माना जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दिया था, बल्कि तू लौट आया और तूने उसी जगह जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझे फरमाया था कि ना रोटी खाना ना पानी पीना, रोटी भी खाई और पानी भी पिया, सो तेरी लाश तेरे बाप दादा के कब्र तक नहीं पहुंचेगी। और जब वो रोटी खा चुका और पानी पी चुका तो उसने उसके लिए यानी उस नबी के लिए जिसे वो लौटा लाया था गधे पर ज़ैन कस दिया। और जब वो रवाना हुआ तो राह में उसे एक शेर मिला जिसने उसे मार डाला, सो उसकी लाश राह में पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और शेर भी उस लाश के पास खड़ा रहा। और लोग उधर से गुजरे और देखा कि लाश राह में पड़ी है और शेर लाश के पास खड़ा है, सो उन्होंने उस शहर में जहां वो बुढ़ा नबी रहता था ये बताया। और जब उस नबी ने जो उसे राह से लौटा लाया था ये सुना तो कहा, ये वही मर्द खुदा है जिसने खुदावंद के कलाम की नाफरमानी की, इसीलिए खुदावंद ने उसको शेर के हवाला कर दिया। और उसने खुदावंद के उस सुखन के मुताबिक जो उसने उससे कहा था उसे फाड़ा और मार डाला। फिर उसने अपने बेटों से कहा कि मेरे लिए गधे पर ज़ैन कस दो, सो उन्होंने ज़ैन कस दिया। तब वो गया और उसने उसकी लाश राह में पड़ी हुई और गधे और शेर को लाश के पास खड़े पाया, क्योंकि शेर ने ना लाश को खाया और ना गधे को फाड़ा था। सो उस नबी ने उस मर्दे खुदा की लाश उठाकर उसे गधे पर रखा और ले आया, और वो बुढ़ा नबी उस पर मातम करने और उसे दफन करने को अपने शहर में लाया, और उसने उसकी लाश को अपनी कब्र में रखा। और उन्होंने उस पर मातम किया और कहा, हाय मेरे भाई। और जब वो उसे दफन कर चुका तो उसने अपने बेटों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको उसी कब्र में दफन करना जिसमें ये मर्दे खुदा दफन हुआ है, मेरी हड्डियां उसकी हड्डियों के बराबर रखना, इसलिए कि वो बात जो उसने खुदावंद के हुक्म से बैतिल के मजबा के खिलाफ और उन सब ऊंचे मुकामों के घरों के खिलाफ जो सामरिया के कस्बों में हैं कही है जरूर पूरी होगी। इस माजरा के बाद भी यरुबाम अपनी बुरी राह से बाज ना आया, बल्कि उसने अवाम में से ऊंचे मकामों के काहिन ठहराए, जिस किसी ने चाहा उसे उससे मखसूस किया ताकि ऊंचे मुकामों के लिए काहिन हों। और ये फेल यरुबाम के घराने के लिए उसे काट डालने और उसे रुए जमीन पर से नेस्तो नाबूद करने के लिए गुनाह ठहरा।